ज्ञान दर्शन मानता है पर तारो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का प्यारी व्यक्ति का उपदो को दिखा लेते हनुमान सिंह शंकर पंक्ति हजार मनोरियाने और आदि सुगण उपदेश सभ्यता हूँ शाम काल में सिंह पूजी में गंगा नमनता हूँ दुख को कम खो लाओ सुबह समय जिन संपत्ति को नमः शिवर्धनाय निर्भीतकमनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनाय। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंभकुंड स्वामी की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्न करिंदक शास्त्राचार आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग श्रद्धा से शुरू होता है, ज्ञान और आचरण से संबंधित होता है। श्रद्धा के मायने हैं गुरु के प्रति अनुराग होना, सच्चे देवगुरु शास्त्र के गुणों में जो हमारा अनुराग है वही श्रद्धा है। जो जो आत्मा है उसमें हमारा अनुराग है, आत्मरुचि का नाम सम्यक दर्शन है। और जिस चीज में रुचि होती है उसका ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मरुचि का नाम जैसे सम्यक दर्शन है वैसे आत्मज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और जिसमें रुचि है और जिसका ज्ञान हुआ है उसी में लीन होना चाहिए। तो कहते हैं कि आत्मलीनता का नाम सम्यक चारित्र। कितना आसान आचार्यों ने हमारे लिए उपदेश दिया है कि यदि आपकी अपने आत्मा में रुचि है तो माना होगा कि मोक्ष की शुरुआत, मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। और जिसकी आत्मा में रुचि नहीं है, जिसकी अभी संसार के विषय भोगों में रुचि है, उसके लिए क्या कहिएगा। अभी वो धर्म से बहुत दूर है, दोनों चीजें एक साथ नहीं सकती भैया। जैसा यथा मनोचंती विषय सुनि तथा तथा संदिप्त सत्तम उत्तम। जैसे जैसे हमारी विषयों के प्रति अभिरुचि कम होती जाती है वैसे वैसे आत्म तत्व की ओर रुचि बढ़ती चली जाती है। ये ऐसा कहें कि जैसे जैसे आत्म तत्व की ओर रुचि बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे विषय और भोगों के प्रति रुचि घटती चली जाती है, कसौटी है। दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही है ऐसा कभी नहीं, एक बढ़ेगी एक जरूर से घटेगी। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे अंधेरा भी हटता चला जाता है। ठीक है, चाहिए हम ऐसी श्रद्धा को मैं मान के चल रहा हूं कि परमाणु योग की परिभाषा के अनुसार हमने ऐसी श्रद्धा को टिका लिया है। सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, भगवान के द्वारा कहे गए सात तत्व भले ही हमें न आते हो पर हमें इतना विश्वास है कि जो भगवान ने कहा है सो सच्चा है। ऐसी श्रद्धा भी हमारी है, हमें अपनी आत्मा की बात रुचती भी है। अब ये बात बनी है कि हमारे भीतर कर्म का विशेष रूप से दर्शन महीने का छा हुआ है, उपशम हुआ है, विषय उपशम हुआ है। रात के समय में स्नायक समय दर्शन होना तो मुश्किल है क्योंकि केंद्र शुद्ध केंद्र का पालन भी नहीं है। कहीं दिन के चरणों में बैठ करके अपने सम्यक दर्शन को इतना परफेक्ट करने की फिर छूटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अभी तो हमें शोक सम्यक दर्शन अगर होता भी देखने के लिए बर्तन खरीद लिए, तब तो उसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है कि अगर वो बर्तन मेरे शहर में देखे तो और धूल भी नहीं हटाए तो इतनी धूल बन जाएगी कि बर्तन होते हुए भी अपना चेहरा उसका दिखाई नहीं पड़े। और किसी भी नगर के लिए किसी आधार होने हो गए, किसी भी शुभ अगर हम चीज गए तो बर्तन नीचे गिरेगा वो टूट जाएगा। ऐसा इतना ही प्राइवेट, इतना ही डेडिकेट सम्मान दर्शन है। श्रद्धा होते होते छूट जाती है, वातावरण इतना बढ़िया नहीं है कि वो हमारी श्रद्धा को बढ़ाए। चौथे काम में यही पहुंचा है, फुल फैसिलिटी है, आपको थोड़ा भी मन बढ़ रहा है समोशन लगा रहा है, आपको भगवान को विश्वास नहीं है कैसा नहीं हो रहा है, देख के आ रहा है कि कैसे होता है तीन लोग के माथ पर कैसा होता है, सबके देव का शरीर और गुरु का शरीर और शास्त्र बुद्धि में संख्या आ रही है। श्रद्धा को बहुत मानते हैं, श्रद्धा की मजबूत रहने के लिए उत्पन्न होने के लिए वृद्धि के लिए, लेकिन आज के समय में श्रद्धा की उत्पत्ति के कारण भी थोड़ा है, साधन तो है पर इतना पुरुषार्थ नहीं करता है, और पुरुषार्थ की कमी होने की वजह से श्रद्धा में वृद्धि भी नहीं होती। यदि चारित्र गुणों के द्वारा श्रद्धा में वृद्धि होती है, वे चारित्र गुण भी हमारे पास है। कहते हैं दर्शन को बढ़ाने वाली अगर कोई क्रिया है तो चैत्र गुरु और प्रवचन भक्ति है। चैत्र की गुरु की ओर प्रवचन की कभी शुरुआत करते हैं, पीठ पर स्वामी की पढ़िए, 25 क्रियाएं पढ़िए, उसमें से एक ही क्रिया सबसे श्रेष्ठ मानी गई सम्यक वर्धन क्रिया। सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया कौन सी है तो भक्ति है, सम्यक दर्शन को बढ़ाती है। प्रवचन भक्ति है, चैत्र भक्ति है और गुरु भक्ति है। इन सबके प्रति जो हमारा एक डीप डिवोशन है, एक जो हमारा उनके प्रति समर्पण हो रहा है, जैसे हम चीजों के प्रति समर्पित होते हैं, संसार की चीजों के प्रति अपने बताने के पीछे कितने समर्पित होते हैं कि 8 बजे खुलना है 8 बजे खुलना, अब उसमें बैरम के बदल नहीं होते हैं तो ग्रह की खराब होती है। कितना विदेशन है, कितना हम समर्पित है वहां पर, और भी चीजों के प्रति समर्पित है, वैसे ही समर्पण होने के लिए कहा था आपसे कि डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर ये समर्पण हम जानते हैं समर्पण कैसे होता है, लेकिन जो समर्पण जो सांसारिक है वो अगर पारमार्थिक हो जाए तो ये सब हमारे भीतर धर्म की शुरुआत कर देता है। ऐसी श्रद्धा हम बनाने के चल रहे हैं कि इतना काम तो हमने कर लिया है, परमाणु योग के अनुसार जितनी हमको होनी चाहिए थी श्रद्धा और ज्ञान उतना हो गया है, फिर हमें क्या करना चाहिए। मन पंद्रह कह रहे हैं दर्शन लाभना प्रभाव को संभालना राधा दुष्ट वृत्ति चरण गुरु पद्धति साधु, हमारी संगम का रत्न है साधु पुरुष तो वो है जो कि मन कांधता रखते के साथ जिनको दृष्टि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दर्शन और ज्ञान से जिनको प्राप्ति हो गई है, वो राग देश की निवृत्ति के लिए चार को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ප්‍රමාද ප්‍රතිපදින් තියෙන විපරත් ප්‍රතිපදින් තියෙන යාම ප්‍රතිපදින් දේශකත්වයේ සිදුවන ප්‍රතිපදින් තියෙනවා. මේක ගැන නම් නෙමෙයි.
छूट जाएगा,
जैसे कि नाव उस पार पहुंच जावे तो फिर कोई से कहना नहीं पड़ता कि ये छोड़ी हमने नाव और ये चली हम दूसरी तरफ। हर उधर जाओ उधर की बात पीछे छूट के तुम्हें कहे कि तुम्हें बात छोड़ दी हमने। एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो नीचे वाली सीढ़ी छोड़ने का विचार नहीं करते, ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचने का विचार करते हैं। नीचे की तो अब भारी छूट जाने और उसे छोड़ने की जरूरत है। और अगर कोई कहे कि मैं तो नीचे की सीढ़ी छोड़ूंगा तो छोड़ो तो बिल्कुल नीचे आ जाएगी अगर ऊपर पानी भरे हुए। ऐसा ही है मोक्ष मार्ग का प्रवचन आचार्यों ने हमें हमारे ऊपर कर्मा करके स्टेप बाई स्टेप एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी हमें चढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें उलझने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर भीतर कहीं उलझन हो गए तो भैया उसको जो है सुलझा लो। ज्ञान की प्राप्ति तो उलझने के लिए नहीं है, सुलझने के लिए है। गलती किससे नहीं होती, सबसे हो सकती, चूक हो सकती है, लेकिन जैसे अपनी चूक मालूम पड़ जाए तो अपने आप जो है बिना किसी दूसरे से कहे सुधार लेना चाहिए। अगर हमारे भीतर ऐसा लगता हो कि नहीं क्या होता है, इससे भी शुभ क्रियाओं से भी क्या होता है, तो तुरंत अपने भीतर विचार करना कि ठीक है शुभ क्रियाओं से होता तो कुछ नहीं है, मेरा कम से कम धर्म भाव में तो लगे हैं तो बन जाए उससे कि अपन शुद्ध को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा तुरंत विचार कर लेना कि शुभ क्रिया से इसलिए कह रहे हैं कि उसी में रचपस नहीं जाना, नहीं तो उसी को धर्म मान लोगी, अगर उसी को सब कुछ मान लोगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे कोई बच्ची को नर्सरी में बहुत अच्छे लगे कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही नर्सरी में तो, और खाए पीने की तो बहुत ज्यादा है दिन भर, दिन तीन की तो थोड़ी बहुत सिखाई थी का पोएम सिखा दे और फिर अपने बच्चे खेलते रहते हैं और खाओ। अब दो सोचे कि एक में रहे हम जिंदगी भर जल पढ़ते रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है, तो क्या ठीक है उसका ऐसा विचार? लेकिन उसका ये विचार ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है तो छोड़ो तो नर्सरी में सामान कटवाओ घर बैठे। लेकिन पास होने पर उसमें से पास होकर के फिर पहली दूसरी तीसरी में पहुंचोगे, एक 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 क्लास पास करना पड़ेगी, वहीं रुकना नहीं है, आगे भी बढ़ना है पर उससे हटना भी नहीं। ऐसा जो है ये चारित्र जो हमने आज अपन इस साधकाचार की चर्चा करेंगे, इसलिए भूमिका आवश्यक है कि अपन पूरा व्यवहार चारित्र का वर्णन करेंगे, लेकिन उस व्यवहार चारित्र के माध्यम से अपन को क्या करना है, अपनी आत्मलीनता रूप कषाय के अभाव रूप चारित्र को प्राप्त करना है। कषाय का जितना जितना अभाव होता जाता है उतना उतना चारित्र बढ़ता चला जाए। कषाय मतलब क्या? चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी जितना हटता चला जाए उतनी अपनी मोहमल जो है आत्मा की प्रगति अपने लिए प्राप्त होती चली जाती है, वही हमारा प्राप्तव्य है। तो कषाय को मंद करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अपनी आत्मा की प्राप्ति। और कषाय किन किन चीजों से होती है, उनको छोड़ने का उद्देश्य क्या है ताकि कषाय मंद हो गए? तो ये बात अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि चीजें तो छोड़ दें और कषाय मंद नहीं गई तो भी ठीक नहीं, और कषाय मंद हो गई और आत्मदीनता नहीं गई। कषाय तो मंद बहुत लोगों की होता वाला अगर आदमी हो गए तो उनको सर्कल में बैठ के कहा है और कहा नहीं, आपने मना ठीक डलो मलो खा लो तो खा लो नहीं, उनकी बड़ी कषाय मंद है तो कहती क्या उनको आत्मा की उपलब्धि हो गई? सजगता भी आवश्यक है। कषाय की मंदता बुद्धिपूर्वक सजगता पूर्वक हो गए, आत्मा की तरफ ध्यान हो गए तो कषाय की मंदता उपयोगी है और चीजों को छोड़ना तब उपयोगी है जब कषाय की जितनी विरक्ति उतना त्याग। अगर विरक्ति के बिना त्याग होगा, आसक्ति पूर्वक त्याग अगर बाहर घटित होगा तो बाहर का वो त्याग दूसरे को कोई संदेश नहीं दे पाएगा और अपने जीवन का कोई उसमें उद्धार नहीं होगा। आसक्ति पहले तोड़ना, चीजें छोड़ने के पहले चीजों की आसक्ति भी छोड़ना आवश्यक। छोड़ देने के बाद तो छोड़े गए तो ये भैया आसक्ति, वैसे तो होता है कि छोड़ने के पहले आसक्ति छूट जावे तो चीजें तुम का छोड़ोगे तो छूटी हटी, हमें पकड़ने के से हमने अपनी पकड़ छोड़ दी और क्या किया। तो जो चीज जो है हमने पकड़ रखी जिसके प्रति हमारी आसक्ति है उसको कमती करना ताकि हमारा राग द्वेष कम हो। हमारा पूरा आचरण ग्रहण करने का सिर्फ मकसद यह होना चाहिए कि हमें आत्मलीनता आवे, क्योंकि संसार के प्रपंच में जितने हम फंसेंगे उतने आत्मा से दूर होते चले जाए। और हमने अब तय कर लिया, हमें दृष्टि मिल गई कि ये चीजें जो है हमें कुछ काम की नहीं होने, तो जितना समय बचे आत्मलीनता के लिए चाहिए। एक व्यक्ति थे कटनी में तो कहते कि 400 रुपया को ढूंढना था रखते हुए, बस 400 कमाए एक दिन में, मैं सामान 400 तो बेच लो मेरी को कमा लो कहते, अपना प्रॉफिट कितने हो तो ठीक है 20% लेना है, 100 रुपया तो नहीं, मैंने
माता रोटी करके देख लो, मैं कल यहीं पर करके देख लो उनके, अगर मेरे शांति उसमें तो बहुत अच्छी बात, कौन नहीं कर रही है कि मैं करूं, अपन को शांति चाहिए। और आता भाभी में और रात उल्टा में तो किसी को शांति नहीं मिलती है, तो वो व्यक्ति 400 तो कमा, एक बार एक व्यक्ति शुरू पाओ लग रहा है जहां लगता शुरू पाओ है, क्या कहते हैं उसको शुरू पाओ तो कहते हैं शुरू पाओ मतलब सिर से पैर तक पूरे अपने उसके लिए जीवर और शरीर और पुण्य हर की सब चीजें कितनी आती सब पूरा, तो वो ले लिया। अब इन सब सामान निकलवा लो, इनमें जब हिसाब जोड़ो 800 को भाव ये नहीं हुआ, 400 को दे सका था आप सेना पर नहीं, तो वो कहना हम दूसरी दुकान से लेंगे, ये ले लो दूसरी दुकान से, हम तो 400 को दे सका, आधे ले जाओ आप आधे भाने ले लिए। मैं कहा ऐसा भी दुकानदार हमने नहीं देखा, लगता तो प्रामाणिक है, चलो इसी से लेते हैं। तो जैसे जैसे 400 रुपया दो और आधे सामान लो, तो मैं तुमने उसको प्रणाम कर लिया, उस गृहस्थ श्रावक को प्रणाम कर लिया, भैया प्रणाम। तो ग्राहक को तो जो चाहे कोई प्रणाम कर ली, अगर ऐसे ढंग से प्रणाम किया था तो जैसे बहुत उपकार मान रहे हो, कि मैं भाई हुआ क्या, कि मैं भैया इसलिए प्रणाम करते कि आपका बहुत उपकार कि 5 मिनट में हमारे 400 रुपये काम हो गए, अब तो जो है ताले चाबी से दुकान बंद, अमंदर में गए थोड़ा स्वाध्याय करें और धर्म ध्यान करेंगे, आपका बहुत उपकार है। और ध्यान की तो हम नहीं कह सकते हैं, मैंने जो भरो तुम्हें सामान उसको कल आए उसको फिर 400 को दे दें, तो दूसरे दिन फिर आया वो उसको 400 को दे दिया, फिर ताला लगाया और फिर अपने मंदिर चले। मेरे धर्म के घंटे मेरे जीवन में भरे, ऐसा जिसका रुझान है वो है आचरणवान व्यक्ति। तो बाकी अपनी सांसारिक क्रियाओं में तो कोई कमी नहीं आई, और उसमें से जैसे तैसे करके 10-15 मिनट निकाल लो, आधा घंटा निकाल लो, थोड़ा सुन लो, थोड़ी पूजा वूजा कर ली और निश्चिंत होगा क्या कर तो लगा आज को तो हमने सब कर लिया। और फिर उसके बाद तो 24 घंटा 23 घंटा फ्री है, चाहे जो करें, अरे हुआ नंबर हुआ आपका कर और का करें, ऐसा नहीं सोचना। अकेले उतने देखो, एक व्यक्ति एक कदम तो रखे अपने घर की तरफ और 100 कदम रखे दूसरे के घर की तरफ, भैया पहुंचे कहां, अपने घर के दूसरे के घर, दूसरे के घर। हम अपने आत्मा की तरफ तो एक कदम रखते हैं और संसार की तरफ 100 कदम रखते हैं, तो कहां रहेंगे, संसार में रहेंगे। ऐसा छोटा सा विचार करके अपने को अपने आत्मा की तरफ के कदम बढ़ाना है, जिससे हमें आत्मा की प्राप्ति हो। आत्मा की प्राप्ति मतलब राग देश से रहित परिणति हो गई, और कोई आत्मा की प्राप्ति किसी धरी धोड़ी है कि जो आत्मा हो सामने उठा ले योजा हो गई प्राप्ति नहीं। हमारे जो विकारी भाव हैं वे कितने कम हुए हैं और कितने हमारे भाव शुद्ध हुए हैं, ये हमारे आत्मा की प्राप्ति है, ये विभाव है उसका। इसी के लिए कहते कि श्रावक अगर लेवे तो 5 अंग्रत लेना चाहिए श्रावक के लिए। आज के समय में बहुत कठिन है वैसे अंग्रतों की चर्चा करना, पर अब कन्या अंग्रत की भी करेंगे, दिग्व्रत और देशव्रत रूप जो गुणव्रत है उनकी भी चर्चा अपन करेंगे, शिक्षा व्रत की 12 व्रतों की चर्चा अपन इस पूरे उसमें करेंगे, और रात्रि में संलेखना कैसे करनी है वो भी बात करेंगे, प्रतिमाओं की चर्चा भी करेंगे। क्योंकि 3 प्रकार के श्रावक हैं, एक पाक्षिक श्रावक है, एक नैष्ठिक श्रावक है और एक साधक श्रावक है। अपन किस में ही ये अपन को देख लेना, पाक्षिक श्रावक वो कहलाता है जो अपने धर्म का पक्ष ले गए, क्योंकि पक्ष का अर्थ क्या है, 5 पापों के त्याग का नाम पक्ष है, उसका जो समर्थन करता अर्थात जो 5 पापों का त्याग करके एक देश अनुव्रतों को ग्रहण करता है वो पाक्षिक श्रावक है। एक परिभाषा तो ये भी है, और दूसरा कहते कि अपने सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है जो अपना पक्ष है, इतना में अपन पाक्षिक श्रावक हो गए। अभक्ष भक्षण का त्याग कर दिया, लेकिन अभक्ष भक्षण का त्याग करना कर दिया बहुत कठिन है आज के समय में। कोई व्यक्ति पूरे अभक्ष पदार्थों का त्याग कर देवे, हमें तो नहीं लगता कि बहुत आसान तो नहीं है। पूरे सुबह से शाम तक कोई अभक्ष पदार्थ पहनने वाले की चीजें छोड़ दो, भोजन अकेले की ले लो तो भी नहीं हो पाएगा। पता नहीं कौन सी चीज में कौन सी चीज मिला करके आई है, और मर्यादा से बाहर की हो गई तो सब अभक्ष है, चाहे रोटी हो चाहे दाल सब्जी हो गए, 12 घंटा की हो गई सब रोटी दाल अभक्ष हो गई की मर्यादा है। क्योंकि अभक्ष भक्षण का त्याग अकेला भी कर दे, मोटे मोटे चले दाल अभक्ष का त्याग कर दे तो भी पाक्षिक श्रावक है। और अपन अपने को कसौटी पे देखें कि अपन कितने कर पा रहे हैं, ये 22 वक्षी का नाम नहीं मालूम है, प्राप्ति तो बात ही अलग है, 22 वक्ष इतना प्रयास करना पड़ेगा कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा और अभिक्ष का त्याग, व्यसनों का त्याग, सात व्यसन हैं उनका त्याग करना, इतना मोटा मोटा हो जाए। वैसे तो संत रुद्र स्वामी कहेंगे कि तीन मकार का त्याग और पांच अनुव्रतों का पालन करना, ये आठ मूल गुण हैं श्रावकों के। लेकिन बच्चों की अगर ले ले तो पांच दंबर फलों का त्याग, तीन मकार का त्याग कर दो। तीन मकार का त्याग करना भी आज मुश्किल हो गया, मध्य मधु मांस का त्याग करना मुश्किल हो गया। पता नहीं हमने कहो अभी अभी बेटे को कैडबरीज लेके दी है और उसमें लिखा है बीस जिलेटिन, तो वो भी खा रहा है और हम भी खा रहे हैं, जबकि उसमें दो मांस पड़ा हुआ, हमको सुबह नहीं। हम तो उसको 10 रुपए की फर्स्ट क्लास जो है एक चॉकलेट और टॉफी खरीद के देते, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी किया जाता था। हम आज नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, करना चाहेंगे। तब उसमें जो आठ मूल गुणों में से आचार्य समन्त रुद्र स्वामी के अनुसार जो पांच अनुव्रत हैं, उनका अपन स्वरूप समझें कि कैसा अहिंसा अनुव्रत है। और एक बात और समझ लें कि इन सबके साथ चार बातों को होनी चाहिए। श्रावक पाक्षिक हो गए, चाहे नैस्तिक, नैस्तिक वो कहलाता जो प्रतिमा वगैरह धारण कर लेते हैं वो नैस्तिक श्रावक कहलाते, वो जीवन के अंत में संलेखना लेकर के मरण करें वो साधक श्रावक कहलाते। इतने तीनों श्रावक हैं। मैं आपसे कह रहा था कि कोई भी श्रावक हो, चाहे पाक्षिक हो, चाहे नैस्तिक हो, चाहे वो साधक श्रावक हो, चार बातें तो उसके जीवन में होनी चाहिए। प्राणी मात्र से मैत्री, जो गुणवान है उनके प्रति प्रमोद भाव, और जो दीन दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव, और जो मोक्ष मार्ग के विपरीत चलते हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव। ये जब तक चार में हो गए तो चाहे पाक्षिक हो चाहे नैष्ठिक हो गए, उसको हमें पाक्षिक मानना है, नैष्ठिक मानना। और आज ये चारों बातें जो है, अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा, अपने को खुद भी देखते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबको अपने को देखना चाहिए। अपन देखते हैं कि ये चार बातें हैं कि नहीं अपने भीतर। प्राणी मात्र से मैत्री का भाव, क्योंकि मैत्री का भाव का मतलब क्या हुआ? सबसे हम दोस्ती करके जाएंगा, क्योंकि यहां कोई के पास नहीं जाना, इतना ही विचार करना कि दूसरे को कोई कष्ट में हो गए, दुख में हो गए। यहां पर संसार में सबको दुख है अपने अपने कर्मों से, मैं दूसरे के दुख में निमित्त ना बनूं, दूसरे को दुखी ना हो, ये मेरी मैत्री है। और दूसरे के पास अगर एक भी गुण अधिक है तो उसके प्रति मेरे मन में ईर्ष्या न आवे, उसके प्रति तो हर्ष हो गए, अरे वाह ये कितने धर्म ध्यान करने वाले हैं, अरे इनके जैसा मैं कर पाता, ये कितनी अच्छी पूजा करते हैं, मेरा तो इतना अच्छा मन ही नहीं लगता, ये तो कितने हाव भाव से बड़े ठाक से पूजा करते, मैं भी ऐसा करता, अरे ये कितना अच्छा स्वाध्याय करते हैं, बड़े स्वाध्यायी हैं, इनका कितना मन लगता है, हमारा तो इतना शोक सम्मी, चलो इनके पास बैठते हैं, उनसे दो बातें सुनेंगे कि कहो भैया तुमने क्या सीखा हमें बताओ। ऐसा हर्ष होना चाहिए, गणेश प्रबोधन ये नहीं हो पाता। व्रत नियम संयम तो भैया करते हैं लोग, वैसे हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करना चाहिए, करते हैं, पर उसके साथ जो बातें और हो गए तो सोने में सुहागा वाली बात है। और जहां दीन दुखी दिखाई पड़ जाए, कोई हो गए, उसमें किसी का भेदभाव नहीं है, प्राणी मात्र के प्रति कोई भी दीन दुखी दिखाई पड़े, हमारे भीतर सहानुभूति और सहायता का भाव तो आना ही चाहिए। इसके बिना अहिंसा तो कभी नहीं सकती, मैत्री प्रमोद करुणा और माध्यस्थ। जो व्यक्ति उल्टे मार्ग पर चलता, भगवान के बताए मार्ग को नहीं जानता, उसके प्रति क्या करें, द्वेष करें क्या? कहते हैं द्वेष करो, निराप करो, निंदो, उसकी निंदा करो, न प्रशंसा करो, तटस्थ रहो कि भैया ठीक है, और विचार करते रहो। मैत्री फिर भी है उससे, क्योंकि प्राणी मात्र से मैत्री है, पापी से ही मैत्री करना पड़ेगी, उनके पाप से मैत्री भले ही नहीं आई, उन्होंने पापी जीव से तो मैत्री है, क्योंकि उसको सुधारने का मार्ग भी भगवान ने बताया। और हम सब भी जो है, भले ही आज वर्तमान में थोड़े कमती पाप करत हो गए और कोई हमसे ज्यादा करत हो गए, पर हैं तो सब एक ही सत्य व्यक्ति के, सभी पापी हैं, कोई कमती करत है कोई ज्यादा करत, जो ज्यादा करत से उसको दिखा जाए, कमती करत से दिखात नहीं है, मैंने है तो सब बताओ कौन नहीं है। लेकिन अपने उस समय भूल जाते हैं कि दूसरे को पापी देखने से पहले अपने पाप को देखो कि हम भी तो हैं, हम आज थोड़ी सी सिद्ध आ गई है तो हम पाप को जो है बुरा मान रहे, अभी उसको सिद्ध नहीं आई तो वो पाप को अच्छा मानता और उसी को करता चला, अरे इसको बुद्धि आवे और इसके भी जो है ऐसी दृष्टि इसको प्राप्त हुए कि ये भी अपने राग द्वेष परिणाम और पाप भाव से बचे। ऐसा जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हमारे
साधक होने का कोई औचित्य नहीं, साधक या साधु होने का, शमन और साधु दोनों ही मार्ग मार्गी हैं, मोक्ष मार्गी हैं। ये बात अपने को पहले ध्यान में रखनी और फिर उसके बाद कहते कि जो सबको अनुग्रह से बताएंगे, पर इसके साथ सामान्य जो साधक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए कहते हैं अपन, वो क्या चीज है? कहते दान पूजा शील और उपवास। चलो जो आनंद से आगे आनंद बनो, दान पूजा शील और उपवास ये तो साधक के होने चाहिए। अनुवृत्ति हो तो हो चाहे नहीं हो पावे, लेकिन दान करे। रोज चार प्रकार का ध्यान बताया, पात्र के लिए दान दे दे और पात्र बुद्धि से दे दे। इतना अपन लोग करते हैं कि ऐसी भावना भाते हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान या कि ज्ञान दान या उसको उत्तर दान कह लीजिएगा, जिससे मोक्ष मार्ग में सहयोग बने वो देना। ये चीजें जो है रोज थोड़ा विचार, दान का विचार तो करना ही चाहिए। पूजा, पूजा से बड़ी तो कोई चीज होती है, भगवान के गुणों के प्रति अनुराग होना ये मन से पूजा है, और भगवान के गुणगान करना इस वाणी से ये वाणी से होने वाली पूजा है, शरीर से हाथ जोड़ करके द्रव्य आदि समर्पित करना ये सब जो है शरीर से की जाने वाली पूजा है। तो कहते मन वचन काय से सबसे भगवान की पूजा करता है सोई श्रावक है, और पूजा नहीं करे तो क्या। पूजा जो है वो पवित्र करने वाली, पूजा तो पवित्रता के अर्थ में आई, कभी अपन समझेंगे पूजा पर भी, लेकिन पवित्रता के लिए है। मेरे परमाणु की निर्मलता मुझे करनी इसलिए पूजा भी करनी, लोभ कम करना है इसलिए दान भी करना है, शील अपने स्वभाव की तरफ जाना है इसलिए पंचेंद्र के विषय भी छोड़ना आवश्यक। तभी तो अपने स्वभाव की तरफ जाऊंगा तो शील का भी पालन, उपवास भी करना है, क्योंकि कभी कभी जो है ऐसा लगता है कि आप तो अपने आत्मा में ही लीन रहे दिन भर, अब कौन पड़े उस प्रपंच में के बनावे और फिर खावे और खुआवे। भैया आज तो कुछ नहीं करते, आज तो अपन अपने में लीन है। कषायों का त्याग करना और आहार का त्याग करना, दोनों का एक साथ त्याग करना, यही तो उपास कहलाता है। अकेले भोजन के त्याग का नाम उपवास नहीं है, भोजन के त्याग के संगे कषायों का भी त्याग करना तो उपास कहलाएगा। वो कोई क्रम में अकेले कषाय का त्याग कर दिया और फिर खूब अच्छे दो तीन तीन बार खा रहे, कहते तुम्हारा वो भी अभी है तो कषाय जब तो खा रहे, बिना रात के खाते जाएगा बुद्ध मत बना, तो ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि तो भोजन का भी त्याग और कषाय का भी त्याग तो उपवास, ये चार तो सामान्य है, रोज रोज इनको श्रावक करता है जितनी उसकी गुंजाइश है। ये नहीं है कि पूरी तरह से कर पाएगा जितनी गुंजाइश। इसके बाद फिर अपन आएंगे इस पर कि अब अनुव्रत है, अनुव्रत तो उससे भी आने की चीज है। कैसे है अनुव्रत? जिन अनुव्रत भगवान धारण नहीं करते, एक चीज ध्यान रखना, तीर्थंकर अनुव्रत धारण नहीं करते। तीर्थंकरों के तो अनुव्रत जैसा आचरण आठ वर्ष के होते ही साथ हो जाता है, उनको अनुव्रत धारण नहीं करना पड़ते। ये तो महान आत्मा है तो महाव्रत ही धारण करते हैं, लेकिन उन्होंने शारुकों के लिए अनुव्रत कहे हैं, भगवान ने कहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत कीमती है। अनुव्रत का अर्थ ये नहीं समझना कि बहुत छोटे व्रत हैं, व्रत भैया छोटे बड़े कोई नहीं होते, व्रत तो सब बड़े ही होते हैं, कि महापुरुषों के द्वारा कहे गए हैं इसलिए सब व्रत बड़े हैं, कोई व्रत छोटा नहीं होता। जैसे भगवान की मूर्ति छोटी बड़ी नहीं हो, अपनी दृष्टि में हो छोटी बड़ी, मनो है तो तीन लोग के नाथ, चाहे एक इंची के हो चाहे सौ फुट के हो, तीन लोग के नाथ है, आप जान ही कह सकते कि छोटे से भगवान है, भगवान तो उतने बड़े हैं, आपकी मूर्ति छोटी हुई है भगवान उतने बड़े। इसी तरह ये है कि व्रत जो है छोटे बड़े नहीं होते, जिनको हम अंगीकार करते जो भगवान ने कहे, ये सब जो है व्रत हमें कर्मों की निजरा कराने के लिए हैं। अगर ये कर्मों को निजरा कराते हैं तो बड़े व्रत हैं, ऐसा विचार करके नवी व्रतों को भी अपने जीवन में पालन करने का। आज अपन को अहिंसा व्रत करना है कि कैसी है वो अहिंसा जिसको हम अपने जीवन में, अहिंसा कोई अकेला व्रत नहीं है, अहिंसा कोई अकेला अनुष्ठान नहीं है, अहिंसा तो पूरा जीवन दर्शन है। आप अहिंसा को कोई व्रत मत मानना कि अडॉप्टेड कहीं बाहर से गोद लिए बेटे की तरह है अहिंसा, नहीं, हमारे जीवन हमारा स्वभाव है, राग देश पर रहते स्थिति हमारा स्वभाव है। अहिंसा की अगर परिभाषा करें, मन की अहिंसा कौन सी है? कहते मन में विकारी भाव न आना, ये है मन की अहिंसा। समता परिणाम रखना, ये है मन की अहिंसा, और सत्य वचन बोलना, यह है वाणी की अहिंसा, और शरीर से जितना बने दूसरे का सहयोग करना, उपद्रव नहीं करना दूसरे का, वो है सब शरीर की अहिंसा। और तीनों की अहिंसा होनी चाहिए, अपन शरीर की अहिंसा का पालन बहुत कर लेते, बरका के निकट के पीटी में मर जावे। मनु को अगर बुराई हो तो एक एक ऐसी बात कह दे हैं कि तो जिंदगी भर तड़पता है। जी जो मन की अहिंसा है उसका कोई ध्यान ही नहीं, और चीटी बरका के निकले थे बिल्कुल, केवल पांव में पड़ जाए मर गए नहीं तो वह दिखाई पड़ती है ना। और वाणी की अहिंसा, वाणी की अहिंसा का कोई ख्याल ही नहीं रहता, न मन की अहिंसा का ख्याल रहता। थोड़ी बहुत शरीर की अहिंसा पालन करके हम अपने को अहिंसक मान लेती, कहती इतना अकेले से काम नहीं करे। आज अपन को समझना है कि कैसे जो है श्रावक भी आसानी से अहिंसा का पालन कर सकता मन वचन का है, लेकिन थोड़ा बहुत सजगता रहे, ध्यान रहे। तो अब इसको पढ़ते सातवें नंबर का है, संकल्पाकृत कारित मन नाद्योग प्रयस्त चर सत्यां किताब नहीं निकाली। संकल्पाकृत कारित मन नाद्योग प्रयस्त चर सत्यां महिमस्तीयत्तबाहू स्थूल दधात निरमनं निपुनः। कहते हैं जो हिंसा आदि पांच पापों के त्याग करने में समर्थ है, निपुण हैं, उन्होंने क्या कहा है हमारे लिए, संकल्पात संकल्प पूर्वक और कृतकारित अनुमननाद। एक तो वो स्वयं करते हैं कि दूसरे से करवाते हैं, कोई करे तो उसका समर्थन करते, इसी को अनुमोदना कहलाती है। तो कृतकारित और योग प्रयत्न जो भी काम करेंगे, मन से करेंगे, वचन से करेंगे और शरीर से करेंगे, तो कहते न दूसरे से कराएं, न स्वयं करें और न दूसरे के करते हुए का समर्थन करें, न मन वचन का एकों उसमें लगाएं। ऐसे सब प्रकार से चर सत्वान अर्थात प्रस जीवों को, यहां पर चर से अर्थात चलने वाले जीवों को लिया। प्रस जीव जो है वो अपने रक्षा के लिए तय कर लेते हैं, एक इंद्रिय स्थावर जीव हो तो वे तो ठहरे हुए हैं, पेड़ लगे हैं, आप उसको काटो तो वो भग थोड़ी सकता है। मनो अगर जमीन चारी चली जा रही दो इंद्री, उसको हाथ लगा दो वो अपना रास्ता बदल लेती दूसरी तरफ, चीटी है उसको थोड़ा अगर संदेह हो जाए कि यहां पर खतरा है तो बदल लेती, अपने बचाव का उपाय करती, उसको कहती चर सत्वान अर्थात प्रस जीव। मोटा मोटा हिसाब है प्रस जीवों को मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना के द्वारा संकल्प पूर्वक कहते हैं महिमस्ती, जो नहीं मारता है। इसमें ये नहीं आया कि शरीर अकेले से नहीं, मन वचन का है कृतार कार्यपन हम नहीं कर रहे, मनो तुम तो करो, और कोई करता है तो उसका समर्थन मन ही मन कर रहे हैं। तो कहते ये सब संकल्प पूर्वक इरादपन जिसको कहते विद इंटेंशन, मारने का भाव जो है साधक संकल्पी हिंसा का त्याग तो कर ही सकता, उसी को अनुव्रत कहते। श्रावक को दिन भर में चार प्रकार की हिंसा से तो निपटनी पड़ता है, संकल्पी हिंसा छोड़ दो चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन उद्योग की हिंसा नहीं छोड़ सकता, आरंभ की हिंसा नहीं, पापकारी तो घर गृहस्थी की है उनकी नहीं छोड़ सकता, विरोधी हिंसा कोई अगर अपना जो है घात करता है तो उससे अपना बचाव भी करना पड़ता, उसके लिए भी कई बार हिंसा करनी पड़ती है। ये तीन प्रकार की हिंसा के लिए भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो सिर्फ कह रहे हैं कि कम से कम इतना तो करो कि संकल्पी हिंसा का त्याग करो, बिना प्रयोजन के दूसरे जीवों को मारने का जो विचार है या जो वचन है या जो क्रिया है उसका त्याग तो आसानी से किया जा सकता है। और अपना प्रयोजन घर गृहस्थी का है, अर्थ कमाने का है, उसमें तो निरंतर जो है हिंसा हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी जो है हम व्यर्थ में जो संकल्प करते हैं मारने का वो भी त्याग कर दिया जाए, ऐसा विचार ये अनुव्रत में है। कौन कह रहे हैं, निपुणाः स्थूल वदात विरमणम आहु, जो निपुण हैं जिन्होंने पांच पापों का पूरी तरह त्याग कर दिया है, वो हमें कहते हैं कि इतना तो आप भी कर सकते हो, स्थूल रूप से हिंसा से बच सकते हैं। हिंसा के लिए अगर अपन समझें अहिंसा या हिंसा कुछ भी आप कह लीजिएगा, दोनों प्रकार की होती है, एक द्रव हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। द्रव हिंसा तो दिखाई पड़ती है कि कोई भी मर गया, भाव हिंसा अपने भीतर कितनी होती है, अकेले मारने का विचार करने से दूसरा मरे चाहे न मरे हम तो मरे ही गए, और दूसरे के बचाने के भाव करने से दूसरा बचे चाहे न बचे मन अपन तो बच गए, इतना ही हिसाब है। पानी छानते हैं तो कछु जीवों को नहीं बचा पाऊ, लेकिन पानी छानने के भाव से हमारे परमाणुओं की निर्मलता होने से हम बच जाते हैं। इसलिए हर 48 मिनट में पानी का छलना लगाता वो कि भैया पीने तो है, मन जीव राशि का घात न हो जाए ऐसा विचार श्रावक करता है। इसलिए उसके निरंतर कहते कि जो पंचमूल स्थान वर्ती श्रावक है उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। जो सामान्य सम्यक दृष्टि है और एक गति सम्यक दृष्टि है, उस गति सम्यक दृष्टि की निर्जरा क्यों होती, इसलिए असंख्यात गुणी होती कि इतना सजग है, पानी का उपयोग वो भी कर रहा है और वो भी कर रहा है, लेकिन एक कहता कि छान लो जीवों की रक्षा करके ही अपना काम निकालना है। कदम कदम पर जो है जीव रक्षा का विचार, सहिंसा का विचार है, इसलिए जो है उसके असंख्यात गुणी निद्रा होती है। इसलिए भाव हिंसा और भाव अहिंसा पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। आज के समय में इसकी थोड़ी कमी हो गई, अपन को इसको सुधारना चाहिए, अपने भावों को नहीं बिगड़ने देना चाहिए, क्योंकि और चाहे एक बार शरीर बिगड़ जावे दाने बिगड़ जावे, लेकिन अगर भाव संभले हैं अपने तो संभलने की बहुत गुंजाइश है। और अपन छोटी छोटी चीजों को लेकर के अपने भाव बिगाड़ लेते हैं, सड़ी सड़ी बातों पर मैं तो 24 घंटे देखता रहता हूं, और अपने स्वयं भी, क्योंकि संस्कार बहुत है, पुराना संस्कार है, उस पुराने संस्कार की वजह से छोटी छोटी चीजें हमारे मन को फौरन प्रभावित करती हैं। अच्छी बात प्रभावित नहीं करेगी, देखो कैसा समय है, पंचम काल इसी भी कहते कि अच्छी बात ज्यादा देर प्रभावित नहीं, कोई ने बहुत अच्छी चर्चा करी हुई है बातों को बिसर गए, और कोई ने तनक कभी कड़ी बात कह ली हुई है तो बातों दिनभर याद रहे, और वह दिन तब की चर्चा करके आए तो अब दिन सुबह सबरी बिसर गई, क्यों संस्कार नहीं है। तो इसलिए बहुत समझने कि अपने भाव में बिगड़ पाते यही अहिंसा, विकारी भावों से जितना जितना बचेंगे उतना अहिंसा की तरफ बढ़ेंगे, बहुत आसान है, लेकिन व्रत ले लेने के बाद तो ऐसा होना ही चाहिए। व्रत के बिना ही कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसका जीवन ही अहिंसा, पूरा जीवन दर्शन है अहिंसा, अकेला अनुष्ठान नहीं है अहिंसा। इसलिए मैंने पहले कहा रिलीजन इज नॉट अ डॉगमा, रिलीजन इज ए रियलाइजेशन, वो तो एक आत्मानुभूति है, धर्म की शुरुआत वहीं से होती है, वो कोई डॉगमा कोई अंधविश्वास नहीं है, वो कोई प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है, वो तो जीवन में घटित करने वाली चीज है। और वो तभी घटित होगी जबकि हमारा मन जितना अधिक विकारी भावों से बचेगा, जितनी देर के लिए चाहे जैसा संपर्क हो जाए पर विकारी भाव नहीं आ पावे तो अहिंसा। और एक चीज जो बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैं पढ़ रहा था कल, एक मानवता की धुरी किताब है जो आपके यहाँ आए थे अभी नीरज जी उनकी, उसमें उन्होंने ये बात बहुत पता नहीं कहां से चिंतन करके मुझे अच्छा लगा कि देखो अपन ऐसा करते हैं कि कर्ता एक है और भोक्ता अनेक है। आपको लगेगा कि अभी तक तो जी सुना था हमने कि एक करो से ये कल भोग है दूसरे को का मतलब नहीं, कहते जी जो आपस में अपन खेल वगैरह देखते ना, जो पक्षियों को लड़वा रहे पशुओं को लड़वा रहे, तो एक व्यक्ति तो लड़वा रहा और सैकड़ों व्यक्ति खड़े देख रहे, सब उसकी अनुमोदना कर रहे, उसे पाप कमा रहे, कर रहे एक पाप, लेकिन सब जन उसकी अनुमोदना करके ऐसे और काम ढूंढ लो अपन कि एक व्यक्ति तो पाप करता है तो जो नहीं समझे कि हम अपने अहिता कर रहे हम अकेले कर रहे पाप तुम्हें का करने, क्योंकि नहीं आसपास के लोग इससे प्रभावित होंगे और जो उसकी अनुमोदना कर बैठेंगे तो उनकी मत्थी पाप जाएगी। पाप को चुपचाप देखते रहने में भी निष्क्रिय पाप तो लगता ही है। ये अपने को विचार करने की बात, मैं तो थोड़ा सा विचार करने के लिए दे रहा हूं आपको, विचार आप करिएगा इसमें कि ऐसा होता है कि नहीं, कोई अपने आसपास बहुत पाप हो रहा हो गए तो अपन जो है चुपचाप उसको अगर जरा भी समर्थन उसका हो गया तो कहते हैं कि इतने लोगों का तो वो एक पापकारी करने वाला है, लेकिन उसका फल तो कितने लोगों को भोगना पड़ेगा। जी क्यों होता है ऐसा कि पूरी की पूरी गाड़ी गिर गई, सबके पाप को दो एक संग आ गए, कहें हम पाप एक संग करो ही, सबने खड़े हो गए एक साथ, तो उनको सबको पाप को दया
ठीक साथ कैसे करा होगा, जैसे अपन सामूहिक पूजा करते हैं, मन तो एक को लग रहा था कड़वे में, दो चार को नहीं भी लग रहा, मन अब समूह में खड़े सपन भी कर ले पूजा, तो उसके माध्यम से सामूहिक पुण्य का अर्जन होता है। ऐसे ही सामूहिक पाप का अर्जन होता है कि कर तो एक पाप रहा था और सब भीड़ जुड़ी जुड़ी थी और कर रही थी, इससे बचना। कहना ये चाह रहे हैं कि कोई अगर इस तरह पाप करता हो तो उसका समर्थन मत करना, वरना एक करेगा और भोगना सबके लिए पड़ेगा। फिर कहते कि करे अनेक और भोगे एक, सैनिक लड़ाई लड़ते हैं और भोगता कौन है, राजा को भोगना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से लड़े हैं। सेवन तेज न सेव ही सेव मानो भी सेव जो कोई पगरण तीर्था कस्तक नया पायर मोती हो रहो जैन को वो तो बैठे कोठा में चुपचाप तीन दिन के बाद कछु नहीं कर रहा हो, रो की वजह से सवेरे जो पसारा फैले है तो कौन से लगने उनको पाप, उनके दिन में जाने जितनी जो बारात जुड़ी है उसको उतना नहीं लगना, जिसकी वजह से जुड़ी है बारात उसको लगने वाला है। अनेक करें और भोग एक, ऐसा ये पाप है, अहिंसा इत्यादि हिंसा ऐसे हो जाती है कि हम कि हमें पता नहीं लगता है कि कल हमारे द्वारा हिंसा होगी, हम तो बहुत बचा बचा के चल रहे थे, जीव बचा के चल रहे थे, लेकिन ऐसी हिंसा तो हमेशा होती। फिर कहते कि करें थोड़ा और भोगे बहुत, अब थोड़ी गुस्सा आ गई थी मां को कि बेटा मानता नहीं है और उठ करके चांटा मार दिया, और चांटा ऐसा लगा कि प्राणों का घात हो गया, तो अब क्या करो, तो थोड़े हो तो बार की चाटी अकेले हो तो मर गए प्राण निकल गए उसके, अब करो क्या करते, क्योंकि कर्म को थोड़ा और भोगना पड़े ज्यादा, इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो भोगना भी ज्यादा पड़ेगा। और कहते कि कर्म सब समान मनो भोग में फल अलग अलग, ये कैसा है, एक ही प्रकार का कार्य दस लोग कर रहे हैं लेकिन जैसी जिसकी परिणति है भावों की वैसे उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए बाहर के कार्य हम देख करके आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि शुभ कर रहा है कि अशुभ कर रहा है, भीतर के परमाणुओं की पकड़ पहले आवश्यक है। आपसे हम इतनी ही बात कहनी भाई कि अपने परमाणुओं को विकृत होने से बचाएंगे तो ही अहिंसा धर्म का पालन होगा, वरना तो कदम कदम पर जो है हिंसा होती है, साधु के द्वारा भी हिंसा हो सकती है पर क्यों नहीं होती, क्योंकि उनमें पांच पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग कर दिया है, इसलिए उनके द्वारा यत्न पूर्वक आचरण करने की वजह से कोई भी मर भी जावे तब भी उसके हिंसा के दोष से भी दूर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भावों में निर्मलता है अगर तुम्हारी बाह्य क्रिया जो है वो फिर हमें उतना कर्म बंध के लिए कारण नहीं हो सकती। एक और इसका ये अतिचार जो लग सकते हैं जो अनुव्रत लेंगे, देखो भगवान की दृष्टि कितनी सूक्ष्म है, आचार्यों की दृष्टि के हमें अनुव्रत भी दिला रहे हो, फिर कहते कि देखो भूल चूक हो सकती संभल के रहना, हमें मालूम है कि कैसा कैसा हो सकता, पांच बातें हो सकती। अतिचार का मतलब है एक देश व्रतों में दोष लग जाना और पूरी तरह से देश मने व्रत का खंडित हो जाना, वो तो अनाचार है, सब जानते हैं अतिचार अनाचार। अतिचार तो कदम कदम पर लग सकते, थोड़ी सी भी गलती है चूक हो गई तो अतिचार, उसको संभाल लें, उसको भी ये वक्त लग लें क्योंकि फिर उसके बाद सत्य आ जाएगा। सेदन बंधन पीड़न मतिधारोपण चारा आहार वारणा स्थूल भाग्य परते पंच हाँ, अगर जिसने जो है स्थूल बद का त्याग कर दिया है, अहिंसानुव्रत ले लिया है, तो छेदन नहीं करना, नाक कान नहीं छिदवाना किसी के, और उनको पशुओं को भी जो है नाक छिदवा के उसमें लगाम वगैरह लगाते हैं, कहते इन सबसे बचना अतिचार लगेगा क्योंकि उसको कष्ट तो पहुंचा रहे, आप अपना काम तो कर रहे पर कष्ट तो पहुंचेगा। बंधन उनको बांधना नहीं, जो गृहस्थ श्रावक हैं जिनको थोड़ा विवेक है वे अपने घर में पशु भी रखते हैं या कि नौकर जाकर रखते तो उनके ऊपर बंधन नहीं लगाते, खुला रखो, आ जा सके, नहीं तो उनको प्यास लगी है तो आपने तो खूंटे से बांध दिया, उनको तो पानी की बाधा हो गई कह तो सकते नहीं, और अगर छूटे हैं तो जहां पानी रखा है वहां जाकर के उसको पी लेंगे, कहते बंधन नहीं करना।
बंधन जो है, पशुओं का बंधन तो है ही, व्यक्ति को भी पतन बांध ले, उसकी किसी कमजोरी को देख करके उस पर टच करना, कहते सॉफ्ट कॉर्नर आपकी भाषा में, उसकी किसी कमजोरी को पता करके धीरे से जब उसको अपने बस में करने हुए सोते हैं तो दबा दे, तो वो अपने बस में रहेगा, कहो भैया ठीक है अब हमारी कमजोरी मालूम है आपको तो एक जगह दबाएंगे तो बन जाएगा। ये सब क्या है, ये करते हैं अपन, ये सब हिंसा में शामिल है। किसी की अज्ञानता का लाभ उठाना, किसी की कमजोरी का लाभ उठाना, किसी की मजबूरी का लाभ उठाना, सब हिंसा में आता है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, मोटी मोटी हिंसा पे तो बहुत ध्यान जाता है। क्योंकि बंधन पीड़न, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाने का भाव भी नहीं करना, वरना तुम्हारे व्रत में अतिचार लगेगा। अतिधारा रोपनम, अपने और दूसरे दोनों, अपने प्राणों को भी पीड़ा नहीं देना, अपने भी 10 प्राण हैं उनको भी पीड़ा नहीं देना, अधिक अपनी इंद्रियों से जो है कार्य नहीं करना, अपने आयु प्राणों का भी जो है घात ना हो जाए ऐसा विचार रखना। अति धारा रोपण, अब सवेरे से शाम तक लगे हैं साफ काम में लगे हैं, पूरे शरीर और मन वचन का सबसे अपने प्राणों का जो है घात कर रहे, दूसरे का तो कर ही रहे। अति धारा रोपण और आहार वार नापी, अपने और दूसरे के आहार इत्यादि का जो है वो रोक लेना। अब और थोड़ा काम है करो, अभी फिर खाना घंटे बर्बाद, ऐसा नहीं। जिस समय आवश्यक है अन्न पान, चाहे पशु हो चाहे अपने आश्रित कार्य करने वाले हों, सबको अपनी नौकर के साथ तो हमेशा होता है कि अब 10 बजे के समय भले ही अपने खा गई को, मगर नौकर को जो अपन खा के आ जाएंगे 11 बजे गए, उनको कौन हूंका है, हिंक पवन को लगती है। ऐसा जिसको अपन विचार कर लेते हैं, हिंसा है उन सब चीजों में, जो अनुवृत्ति है वो इनसे बचेगा। आखिरी में फिर आपसे कहूं कि ये सब बातें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, पहले भी जानी होंगी, मुख्य बात तो ये है कि हम अपने परिणामों की जेल से बने वैसे संभाल करें। बोले आचार्य गुरु और विद्या स्वागत
दर्शन करने वाला है, रात मन भ्रामे सोता हो अथवा वह शिव के निष्कंटक पत्नी कबोता तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, समतारस पानी किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो सम की अविनाश शरमनिया। त्याग के मूर्तिमान सेवकत पंथी गुरुवर प्रणाम ज्ञान के प्रकाश को आपा पर वास को बानु के वानी है सब दान वे को वंद वे देवान वे को तो पर पिदान वे को परम प्रमाणी है अनुभव ताए को जीव के जताए वे को सताए को प्योर आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को तारे को